గోపిజన వల్లభ జగిరి జయగిరి హరి. జయ గోపీ జన వల్లభ జగిరీవరధారి జగిరీవరధారి. జయ సదానందన జయ బ్రజ జన రంజన జయ బ్రజ జన రంజన. జయ సదానందన జయ బ్రజ జన రంజన జయ బ్రజ జన రంజన. జయ యమునా తీర బన చరి జయ కుంజ బిహారీ జయ యమునా తీర బన చరి జయ కుంజ బిహారీ. జయ యమునా తీర బన చరి జయ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా రమణ రాధా రమణ రాధే. జయ రాధా మదన్మోహన్ రాధా మదన్మోహన్ రాధే. ప్ర प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नित्या गौर हरि बोल हरि बोल नित्या गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज प्रचार अष्टोदरक्ष श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोदरक्ष श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा माई जमुना माए की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील प्रभुपाद ट्रांसनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। ताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव महोत्सव और गोवर्धन इको विलेज में श्री राधा मदन मोहन देव का आविर्भाव, इन दोनों पुण्य तिथियों के अवसर पर आज हम यहां पर उपस्थित हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म सन 1500 में कावेरी के तट पर श्रीरंगम के निकट एक गांव में हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु 1510 मकर संक्रांति को संन्यास ग्रहण किए। तत्पश्चात फरवरी के महीने में वो जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए और उसके बाद अप्रैल के महीने में महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ किए। और यहां वर्णन आता है जब महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा कर रहे हैं, महाप्रभु तथा कथित तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके चरण कमलों के स्पर्श से 14 लोक 14 भुवन जो पवित्रीकृत हो जाए, उनको तीर्थ यात्रा करने की क्या आवश्यकता है। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कोयला सही देशेर सही छलेर लोक निस्तारिला। तो वर्णन करते हैं यहां पर कि सही सब तीर्थ स्पर्शी श्री चैतन्य महाप्रभु ये बहाना बना के निकले कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में महाप्रभु उन तीर्थ स्थलों का स्पर्श करके उन्हें महातीर्थ बना रहे थे। सही छोले सही देशेर लोकन स्तारिला। और महाप्रभु का दक्षिण भारत जाने का अभिप्राय यह भी था कि जो उनके संपर्क में आता उन्हें महाप्रभु पवित्र कर देते और उनका उद्धार कर देते। तो कविराज गोस्वामी उस समय के दक्षिण भारत की जन सामान्य की चेतना और परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, दक्षिण देशेर लोक अनेक प्रकार केह ज्ञानी केह कर्मी पाषंडी अपार। तो दक्षिण देश में उस समय कई ज्ञानी थे, कई कर्मी थे, अधिकांश पाषंडी थे। कोई भी भक्ति मार्ग में महत्व देते हुए सेवा करने के लिए तत्पर नहीं था। तो ये भिन्न भिन्न पंथ के लोग जब महाप्रभु के संपर्क में आए और उनका दर्शन किए तो कहते हैं, सही सब लोक प्रभुर दर्शन प्रभावे निज निज मत छाड़ी होइल वैष्णवे। तो जब महाप्रभु का दर्शन किए वो सभी अपने अपने मतों को त्याग कर छोड़कर वैष्णव पंथ में जुड़ गए। और तब महाप्रभु श्रीरंगम में प्रवेश करते हैं। श्रीरंगम में जाकर एक ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करते हैं जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं और वह गीता उल्टा लेकर पढ़ रहे थे। और उसे देखकर महाप्रभु बहुत अचरज में पड़ गए कि आपको तो भाषा का ज्ञान नहीं, गीता भी उल्टा आप लेके बैठे हो, लेकिन नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, भक्ति के सारे लक्षण परिलक्षित हो रहे थे। तब महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए आप इस गीता को पढ़कर क्या समझ रहे हो। तो वो कहते हैं कि विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरुर आज्ञा मानी। कहते हैं कि मैं शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ रहा हूं केवल गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक विप्र, एक ब्राह्मण जो कि सामान्य सा व्यक्ति था जिसे संस्कृत का कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन केवल गुरु के आदेश का पालन करके उसके अंदर इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य हो गया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात अपने अन्य गतिविधियों को त्याग कर उस ब्राह्मण की ओर आकर्षित हो गए। तो इसलिए भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के कलाओं में निपुण होना महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति के कार्य क्षेत्र में चाहे भगवान ने अपने पूर्व कर्मानुसार कोई कलाएं, कोई निपुणता दी हो अथवा न दी हो, लेकिन हमें निपुणता के ऊपर ध्यान नहीं देना है, भक्ति के क्षेत्र में हमें अनुशासन बद्ध और आज्ञाकारिता के ऊपर अधिक ध्यान देना है। केवल आज्ञाकारी शिष्य बनकर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय के अंदर अंतर्हित कर सकते हैं। और ये उदाहरण हम देखते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास के आरंभ में वेंकट भट्ट के द्वारा निमंत्रण प्राप्त किए कि आप हमारे घर पर 4 महीने रहिए। तिरुमला भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद ये 3 भाई थे। वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम गोपाल। और 1510 के उस चातुर्मास में ही महाप्रभु वहीं पर, जो दक्षिण भारत की यात्रा में आने के बाद वहीं पर उनके साथ रहे। और वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस चातुर्मास के समय गोपाल भट्ट को प्रचुर मात्रा में अपनी कृपा दी। उस समय गोपाल भट्ट 10-11 वर्ष के थे और उस अवस्था में गोपाल भट्ट को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना वास्तविक स्नेहिल शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य दो महत्वपूर्ण मुद्दे अपने शिष्यों को सिखाए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दो तत्वों को अपने संप्रदाय में स्वीकार किया। पहला कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम भक्ति और दूसरा वैष्णव सेवा। ये दोनों भावों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानुज संप्रदाय से स्वीकार किया। तो जब महाप्रभु वेंकट भट्ट के निवास स्थान पर थे उस समय वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र गोपाल भट्ट को गोपाल को यह आदेश दिया कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अधीनस्थ उन पर आश्रित शिशुओं को भगवत भक्ति करने का भगवत भक्ति करने के लिए प्रेरणा दें और उनके लिए इस तरह संस्कार पैदा करें, वातावरण पैदा करें जिससे वो जीवन पर्यंत भक्ति करने के लिए प्रेरित बने रहे। तो गोपाल भट्ट इतने नन्हे से थे लेकिन महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच जो कृष्ण कथा से संबंधित चर्चाएं हो रही थी उसे वो सुनकर अभिभूत हो रहे थे। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के साथ उपहासपूर्ण कुछ आदान प्रदान किया, उसमें विस्मय, व्यंग्य, प्रेम, आनंद इस सब का समावेश था। तो महाप्रभु कह रहे थे, वैसे चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत दिया गया है लेकिन जो सारभूत ये था, महाप्रभु ब्रज भक्ति कैसे भाव से प्रेरित है और ब्रज भाव किस प्रकार ऐश्वर्य विहीन है, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लक्ष्मी जी का उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं, वेद तपस्या करके भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन लक्ष्मी अब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो वेंकट भट्ट ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तो नहीं चलती, आप ही बता दीजिए। तब महाप्रभु ने उनको ब्रजवासियों की भक्ति के विषय में ज्ञान दिया और कैसे तत्व के दृष्टि से नारायण ये सभी भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तारित स्वरूप हैं। तत्व के दृष्टि से वो भी भगवान हैं लेकिन भाव की दृष्टि से ब्रजभूमि वृंदावन प्रेम और ऐश्वर्य विहीन माधुर्य भाव से अभिभूत है। नायं सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानिनाम जात्म भूतानाम यथा भक्तिमताम इह। दशम स्कंद के 9वें अध्याय में दामोदर लीला के अंत में यह श्लोक आता है कि भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान से नहीं, कर्म से नहीं, योग से नहीं लेकिन जितने सुलभता से भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे यशोदा माई ने प्राप्त किया, क्योंकि उनके हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण प्रवृद्ध स्नेह कलिलम हृदय आसीत यथापुरा। केवल यही भाव था कि कृष्ण हम पर समर्पित हैं, कृष्ण हम पर आश्रित हैं। तो इस प्रकार ब्रज के इस भक्ति के महिमा का वर्णन करने के पश्चात महाप्रभु वेंकट भट्ट को अपना संग दिए। प्रतिदिन महाप्रभु कावेरी में स्नान करते थे, स्नान करके रंगनाथ स्वामी का दर्शन करते और रंगनाथ स्वामी के सुंदर विग्रह के सामने नृत्य करते और नृत्य करने के पश्चात वेंकट भट्ट के घर पर आकर वो प्रसाद पाते, फिर कृष्ण कथा चर्चा करते। और गोपाल भट्ट जो नन्हे से शिशु थे महाप्रभु की इन सभी लीलाओं को साक्षात देख रहे थे और केवल महाप्रभु के दर्शन मात्र से उनके हृदय के अंदर ऐसी भाव भक्ति विस्फुटित हुई जो कि अनिर्वचनीय था। तो जब वेंकट भट्ट जब गोपाल भट्ट एकांत में थे तब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो अनुचर आए थे जिनका नाम था काल कृष्णदास, तो गुप्त रूप से वो काल कृष्णदास से प्रश्न पूछते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप नदिया में लीला किए तो नदिया में जो लीला किए उसका कुछ वर्णन आप कीजिए। तो उसका वर्णन काल कृष्णदास किया करते थे। तो महाप्रभु के उन नवद्वीप की लीलाओं को सुनकर गोपाल भट्ट के हृदय में इतना प्रेम का उद्गम होता, वो आंखें बंद करके उच्च स्वर में आर्तनाद करते, बिलक बिलक कर रोते थे, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, शोकाकुल होकर विचार करते थे कि विधाता इतने क्रूर क्यों हैं? मुझे जन्म श्री चैतन्य महाप्रभु के नवदीप धाम से इतना दूर दक्षिण भारत में क्यों दिया और ऐसी परिस्थिति में दिया कि इतने वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर नवदीप लीलाओं का मैं दर्शन नहीं कर पाया और अब दर्शन कर भी रहा हूं तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अपने सुंदर केश से विहीन है, जो हर प्रकार के सौंदर्यशाली वस्त्र और आभूषणों से विहीन और केवल ये गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास धारण किए हैं, महाप्रभु के इस संन्यास लीला को मैं देख रहा हूं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो कि गोपीनाथ हैं उनको मैं ऐसे वैराग्य शिरोमणि के रूप में देख रहा हूं। मैं पहले ही नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को क्यों नहीं देख पाया? तो इसलिए वो अपने आप को कोस रहे थे, विधाता को कोस रहे थे, फिर कहने लगे नहीं, वास्तव में विधाता का इसमें कोई दोष नहीं, ये मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है कि मैं महाप्रभु को नवदीप में नहीं देख पाया। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, नवद्वीपे ऐ शक्ति न कोयला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशी निस्तरिला दक्षिण देशे। महाप्रभु ने नवदीप में ये लीला नहीं रचाई, दक्षिण देश में लीला रचाई। तो प्रभुपाद कहते वैसे ही भारत में बहुत प्रचार का मैंने प्रयास किया लेकिन यहां प्रचार के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं थी तो फिर पाश्चात्य देश में जाकर मैंने प्रचार किया। तो अब एक दिन गोपाल भट्ट बैठे हुए थे, अचानक नींद लग गई। निद्रा के घनघोर अवस्था में अचानक उन्होंने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी अनुयायियों के साथ घिरे हुए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु उन अनुयायियों के साथ कीर्तन करते करते चल रहे थे। अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे अनुयायी श्री कृष्ण और ग्वालबाल का रूप में परिवर्तित हो गए और फिर अचानक वो श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर लिए और इस तरह वो बदलते जा रहे थे। गोपाल भट्ट निद्रा भंग करके उठे और भागे भागे आए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर उच्च स्वर में रोने लगे। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और कहा कि चिंता मत करो, अति शीघ्र आप वृंदावन जाओगे, आपके माता पिता भगवान के श्रेष्ठ भक्त शुद्ध भक्त हैं, जीवन पर्यंत उनकी सेवा कीजिए और उनके तिरोभाव के पश्चात आप वैराग्य धारण कर रूप और सनातन के आश्रय में वृंदावन में सेवा कीजिए। इस प्रकार आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और महाप्रभु ने कहा, जो कुछ भी मैं आपको कह रहा हूं उसे गुप्त रखिए। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा कि आपका पुत्र बड़ा महान भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, हर प्रकार के दिव्य गुणों से सुशोभित है। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि इनका विवाह मत कराइए, क्योंकि भविष्य में इन्हें बड़ी सेवा करनी है वैरागी के रूप में। महाप्रभु का चातुर्मास समाप्त हो रहा था। वेंकट भट्ट के हृदय में महाप्रभु के प्रति आगामी विरह को विचार करके बड़ी पीड़ा हो रही थी, और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट और वेंकट भट्ट को छोड़कर वहां से निकल पड़े और अपनी दक्षिण भारत की यात्रा को बनाए रखे। वेंकट भट्ट ने गोपाल भट्ट को अपने भाई प्रबोधानंद सरस्वती के अंतर्गत संस्कृत, व्याकरण, न्याय इत्यादि की शिक्षा के लिए उनको विशेष स्थान दिया। और प्रबोधानंद सरस्वती एक बहुत बड़े पारंगत विद्वान थे, उनके देखरेख में, उनके प्रशिक्षण में गोपाल भट्ट बहुत बड़े संस्कृत के पंडित बने। और आगे चलकर जो श्रीमद् भागवत के आधार पर बना षट संदर्भ, ये षट संदर्भ का मूल रचना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की और तत्पश्चात जीव गोस्वामी ने उसे एक विशेष रूप दिया। तो गौड़ीय संप्रदाय में संस्कृत पांडित्य और व्याकरण के आधार पर जो मूल ग्रंथों का कार्य हुआ उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा। तो इसमें हरि नामामृत व्याकरण के भी जो मूल पद हैं वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही दिए। हरि भक्ति विलास और तत्पश्चात कई दूसरे ग्रंथ जो उन्होंने उस समय प्रस्तुत किए वो यहां पर गौड़ीय संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर बन के रह गया है। वेंकट भट्ट के घर पर एक दिन एक ब्राह्मण आए और वो वेंकट भट्ट की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपका इतना सुंदर सुशील पुत्र है गोपाल, जो कि भगवान का इतना अच्छा भक्त है और वो अपने माता पिता के प्रति इतना प्रेम भाव रखता है। और वेंकट भट्ट जब अपने पुत्र की भक्ति की स्तुति सुनने लगे वो भी बड़े प्रसन्न हुए कि हां, ये ब्राह्मण इनकी स्तुति कर रहा है तो इनके भक्तिमय गुणों के लिए। तो राधानाथ महाराज अपने लेक्चर में कहते हैं कि हर माता पिता को अपने शिशुओं के, बच्चों के भक्ति में प्रगति को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, यह उनका कर्तव्य बनता है। पेरेंट्स शुड फील हैप्पी व्हेन द चाइल्ड बिकम्स डिवोटी। जब बच्चा भक्त बने माता पिता को प्रसन्नता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो कई बार जब बच्चे अलग अलग मंदिरों में जाते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन बच्चे जब हरे कृष्ण मंदिर में आने लगते हैं माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि बेटा इस मंदिर में क्यों जा रहा है, इस मंदिर में बड़ा खतरा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहां जाकर व्यक्ति लौटता नहीं, बदल कर लौटता है। मैं जब मंदिर ज्वाइन हुआ तो उस समय मेरे कई रिश्तेदार सब परेशान थे कि क्या हो गया। तो एक मैंने प्रोग्राम किया सब रिश्तेदारों के लिए चेन्नई में, एक भक्त को लेके गया लेक्चर के लिए। उस भक्त ने उन सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भागवत में कहा गया है कि किसी के परिवार में कोई भक्त बन गया तो उस परिवार के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ियां वैकुंठ जाती हैं, तो आप लोग सभी कितने सौभाग्यशाली हो। तो लेक्चर के बाद मेरा कजिन मेरे पास आया और कहा कि देखो बेटा, भक्ति करते रहना, तुम छोड़ना मत, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना, मुझे ये नहीं पता था कि आपकी भक्ति करने से मुझे भी लाभ होगा। तो इसलिए जब वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज के सामने बैठे थे, कथा आरंभ करने से पूर्व परीक्षित महाराज उनका साधुवाद कर रहे थे और कहते हैं, अपि मे भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैत्र सत्सेव्य प्रीत्यर्थम यत गोत्र स्यात बांधव। कहते हैं कि आप मेरे समक्ष आए हो क्योंकि मेरे पूर्वज पांडव भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार की सर्वश्रेष्ठ सेवा करना चाहते हो तो कृष्ण भक्त बन के आप सर्वोत्तम सेवा कर सकते हो अपने पारिवारिक सदस्यों की, क्योंकि आप अपने बुद्धि तेज ऐश्वर्य आर्थिक सत्ता शक्ति इत्यादि का प्रयोग करके केवल इस जीवन के अंत तक परिवार की सेवा कर सकते हो, लेकिन भगवान के हाथ में अगर आपने अपने संपूर्ण भविष्य का बागडोर सौंप दिया तो भगवान आपके और आपके संपूर्ण परिवार और कई आगे के पीढ़ियों का उत्तरदायित्व लेते हैं। इतना बड़ा गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए वेंकट भट्ट का परिवार बड़ा ही महत्वपूर्ण आदर्श उदाहरण के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिवार है, क्योंकि सभी इसमें भक्त थे और सभी महाप्रभु के चरणों में सेवा में समर्पित थे। जब वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी का निधन हुआ तब गोपाल भट्ट वहां से निकले। अब उनके पास अब तो मतलब यौवन संपन्न अवस्था में आ गए थे। महाप्रभु को जब मिले थे तो वो 10-11 साल के थे। अब जब अपनी यौवन संपन्न अवस्था में थे तो कई बार बचपन में कई अनुभव होता है तो स्मरण नहीं रहता। बचपन में अगर किसी को मिले हो लेकिन जवानी के बाद मिलना वो एक अलग बात होती है। तो गोपाल भट्ट ने महाप्रभु को केवल 11 वर्ष की आयु में ही देखा था। अब वो बड़े हो चुके थे। अब जब श्रीरंगम से निकले तब उनके पास दो चॉइस था, या तो जगन्नाथपुरी जाएं, महाप्रभु के दर्शन करके फिर एक आशीर्वाद लें और फिर वृंदावन जाएं, या डायरेक्ट वृंदावन जाएं। अब डायरेक्ट वृंदावन जाएं तो महाप्रभु के दर्शन संभव नहीं थे, और महाप्रभु 1516 में जब जगन्नाथपुरी में आ गए तो 1516 में आने के पश्चात महाप्रभु फिर कभी जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं गए, 18 साल वहीं पर थे। अर्थात गोपाल भट्ट के लिए दूसरा कोई अवसर नहीं था महाप्रभु को मिलने का। अगर आप उनकी जगह होते तो कहां जाते पहले? पुरी की वृंदावन। पुरी और भाजी। तो सोचो, हम लोग सभी सोचते हैं कि अरे सबसे लॉजिकल बात है, थोड़ा एक आध महीना एक्स्ट्रा होगा लेकिन थोड़ा ऊर्जा लेके जाएंगे, उत्साह लेके जाएंगे। महाप्रभु महावदन न्याय है, कृपालु अवतार हैं, लेकिन उनके सारे अनुयायियों को बड़े कठोर अनुशासन की लकीर के अंतर्गत बांध के रखा। जीव गोस्वामी ने तो 9 महीने की उम्र में महाप्रभु को देखा। 1930 में वृंदावन जाने के पहले, काशी जाने के पहले नित्यानंद प्रभु से केवल पूछा, जाते जाते थोड़ा जगन्नाथपुरी होते हुए जाऊं क्या? नित्यानंद प्रभु जो कि कृपा के महान स्रोत हैं, उन्होंने कहा समय बहुत कम है, सीधा निकलो काशी और वहां से पहुंच जाओ वृंदावन। तो जीव गोस्वामी को अनुमति नहीं मिली। और यहां गोपाल भट्ट भी सीधा श्रीरंगम से आ गए वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, रूप और सनातन गोस्वामी ने उनके स्वागत में इतना महान महोत्सव आयोजित किया और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु को संदेश वाहकों के माध्यम से संदेश पहुंचाया कि गोपाल भट्ट यहां पर हमारे बीच उपस्थित हो गए। एक और विशेष बात जो कि महत्व की है कि वेंकट भट्ट कुछ वर्ष पहले, जब महाप्रभु के आने के पहले 1500 और 1510 के बीच नन्हे से गोपाल को लेकर जगन्नाथपुरी गए थे और वहां जगन्नाथ के दर्शन कराए थे और नीलाचल चंद्र जगन्नाथ के दर्शन करने के पश्चात गोपाल भट्ट के हृदय में एक अपूर्व भगवत भक्ति और प्रेमा भक्ति विस्फुटित हुई थी। तो अब गोपाल भट्ट जब यहां आ गए, जब महाप्रभु को संदेश प्राप्त हुआ, जब यहां से संदेश वहां गया, महाप्रभु ने कहा क्या संदेश है रूप और सनातन का, तब कहा कि गोपाल भट्ट यहां पर आ चुके हैं। और महाप्रभु तुरंत कहते हैं उस संदेश वाहक को कि जाओ रूप और सनातन को यह संदेश दे दो कि गोपाल भट्ट को अपने भाई के रूप में स्वीकार करो और आप सभी आपस में प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान प्रस्तुत करो। तब महाप्रभु ने एक कोपिन और एक वस्त्र और एक आसन उनको प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से ये आसन उनको दिए। और इस आसन का अर्थ क्या था? वो एक ऐसा आसन था जिसके ऊपर बैठकर गुरु दीक्षा देते हैं। कोपिन भेजकर महाप्रभु ने संदेश दिया, विवाह मत करना, सन्यासी बने रहना। आसन भेजकर महाप्रभु ने संकेत किया, रूप और सनातन कभी दीक्षा नहीं देंगे, जीव गोस्वामी का भी कोई भरोसा नहीं, रघुनाथ दास तो दंडवत ही करते रहेंगे, दीक्षा देने का कहां समय है। तो दीक्षा देने का उत्तरदायित्व छह गोस्वामियों में दो ही का था, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो ईस्ट इंडिया के भक्त लोगों को दीक्षा देते थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वेस्ट के लोगों को दीक्षा देते थे। तो महाप्रभु ने इन दोनों में बांट दिया था जोन कि पूर्व से जो दीक्षा चाहिए दीक्षा चाहिए दीक्षा चाहिए बोलेगा रघुनाथ भट्ट दे देना भाई, और पाश्चात्य से कोई आएगा और बोलेगा दीक्षा चाहिए तो गोपाल भट्ट को दे दिया। लेकिन कहा कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भगवत भक्ति की शिक्षा ग्रहण करके उसका आंतरिकरण करके अपने जीवन में उतारना और उसके आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने चरित्र में परिवर्तन, भगवत भक्ति के लहर को अपने हृदय के अंदर अनुभव करना, ये दीक्षा कोई केवल आडंबर नहीं, कोई रिचुअल नहीं। तो इसलिए यहां पर गोस्वामियों के बीच जो आदान प्रदान चलती थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब गोपाल भट्ट को महाप्रभु पहले ही संकेत कर दिए थे कि आपको सेवा करनी है शालिग्राम की, और इस शालिग्राम की सेवा करते रहोगे तो राधा रमन प्रकट होंगे। तो गोपाल भट्ट पहले से ही मनी मन संकल्प करते रहते, स्वप्न देखते रहते, मनन करते रहते एक ऐसे राधा रमन के विग्रह की जिनका मुखारविंद गोविंद देव की भांति, वक्षस्थल गोपीनाथ की भांति और चरण कमल मदन मोहन की भांति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार शालिग्राम शिला ढूंढने के लिए वो गांडकी नदी में उत्तर भारत की ओर चले गए। तो जब उत्तर भारत में गए तो माधव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर पर देवगंगा में रुके और उनके दो पुत्र थे जिनका नाम था दामोदर और गोपीनाथ। दोनों पिताजी ने दोनों पुत्रों को गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में समर्पित किया, एक बन गए गोपीनाथ गोस्वामी, दूसरे बन गए दामोदर गोस्वामी। अब वहां से वो आगे गए, गांडकी नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करके डुबकी लगाया तो हाथ में शालिग्राम आए। एक नहीं 12 शालिग्राम, उन 12 शालिग्राम को लेकर वो लौट के आए और नित्य प्राय उनकी पूजा कर रहे थे। सेवा पूजा करते करते प्रतिदिन वो विचार करते रहते कि कब वो राधा रमन देव प्रकट होंगे। तो एक दिन की बात है, कोई एक व्यापारी आए और उन्होंने वृंदावन के सभी विग्रहों के लिए सुंदर सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए, वस्त्र दिए, अलंकार दिए, गोविंद देव के लिए, मदन मोहन के लिए, गोपीनाथ के लिए। और तब जब इनको ये भेंट दिए, तब गोपाल भट्ट सोच रहे थे कि अरे मेरा तो शालिग्राम है। फिर सोचने लगे, अगर ये शालिग्राम एक सुंदर त्रिभंग स्वरूप धारण करेंगे तो मैं भी इनका श्रृंगार कर सकता हूं। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। कैसे नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की इच्छा अनुसार सत्यम विधातुम जिवृद्धिभाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, कैसे उस अदृश्यताम अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष, कैसे स्तंभ से प्रकट हुए ये मनन कर रहे थे और सोच रहे थे कि शालिग्राम से अगर भगवान प्रकट होंगे तो कितना श्रेष्ठ होगा। ऐसा जब सोच ही रहे थे, अगले दिन प्रातःकालीन जब वो उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि उस शालिग्राम से, दामोदर शालिग्राम से भगवान राधा रमन प्रकट हुए। और राधा रमन देव केवल 12 इंच के थे और उनको देखकर वो इतने अचरज में पड़ गए कि ये क्या है। और सभी दूसरे गोस्वामियों को बुलाया, सब आ गए उनके पास और सब राधा रमन देव की सेवा पूजा करने लगे। बड़े प्रसन्नता के साथ वहां पर उत्सव मनाया गया। राधा रमन देव जो यहां प्रकट हुए वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के आराध्य देव बने। अब उस समय वर्णन आता है कि ये था 1542, 1542। तो अंदाज से जीव गोस्वामी सबसे अंत में आए 1540-41 के आसपास काशी में पढ़ने के बाद, और 1557 में अपने सनातन गोस्वामी दिवंगत हुए और 1565 में रूप गोस्वामी पाद दिवंगत हुए। तो सारे 6 गोस्वामी लगभग 16-17 वर्ष के लिए ही एक साथ रहे। तो इनके बीच इतना समन्वय था, इतना प्रेम था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कि इसलिए जब रूप और सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय इतने कष्ट में था, उनको लगा कि अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं क्योंकि मेरे प्राणनाथ रूप और सनातन यहां से दिवंगत हो गए। लेकिन क्योंकि रूप और सनातन के आदेश को उन्होंने स्वीकार किया था अपने प्राणधन के रूप में, इसलिए वो अपने आप को बनाए रखे। और इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में जब महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद होता है कि सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख क्या है, वैष्णव विरह, वैष्णवों से विरह है कि नहीं। स्वजीवनाधिकम प्रार्थ्यम श्री विष्णु जन संगत विच्छेदे न क्षणम चात्रण सुखांशम लभामहे, एक क्षण के लिए अगर वैष्णव से हम दूर हो जाएं तो सबसे बड़ा दुख और कष्ट का कारण बनता है। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी कई शिष्यों को अब स्वीकार करने लगे जैसे आदेश हुआ था, और उस आदेश के अनुसार वो उन्हें दीक्षा दे रहे थे। अधिकतर जो, जैसे पहले ही एक अग्रीमेंट हो गया था, जो ईस्ट से आएंगे उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी देंगे और जो वेस्ट से आएंगे उनको गोपाल भट्ट देंगे। लेकिन श्रीनिवास आचार्य एक एक्सेप्शन रहे, जो कि बंगाल से आए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, इस तरह लोग कहते हैं, और इसलिए गोपाल भट्ट ने स्वयं उनको दीक्षा दी। और श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देने के पश्चात उन्होंने उन्हें जीव गोस्वामी के अंतर्गत शिक्षा के लिए नियोजित किया। तो इसलिए गोस्वामियों के बीच इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के सभी शिष्यों को बड़े सम्मान पूर्वक भगवान की ही संपत्ति मानकर जो आवश्यक हो वही करते थे। तो इस प्रकार समय बीतता चला गया और गोपाल भट्ट गोस्वामी वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, और कहा जाता है कि राधा रमन मंदिर के जितने अर्च विग्रह की सेवा के नियम हैं, क्योंकि बचपन से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी चार बातों में बड़े विद्वान थे, शास्त्र, संगीत, नृत्य और नाट्य, ये चार उनकी स्पेशलिटी थी। तो और कहा गया है कि वृंदावन में संगीत नृत्य, संगीत और नृत्य के इस श्रृंखला को प्रायः गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही आरंभ किया, लेकिन इतने बड़े विपुल विद्वान होते हुए भी जिन्होंने वास्तव में इतने सारे शास्त्रों की नींव डाली, और वास्तव में छह गोस्वामियों में जो दीक्षा गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये दोनों दीक्षा गुरु थे छह गोस्वामियों में, लेकिन छह गोस्वामियों में ये दो एकमात्र दीक्षा गुरु होते हुए भी इन दोनों के विषय में सबसे कम जानकारी है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसे गुरु थे जिनके शिष्य कई राजपूत बन गए, मानसिंह इत्यादि भी उनके ही शिष्य बने, तोड़ारमल उनके शिष्य बने, और उनके शिष्यों ने सारे लाल पत्थर सप्लाई कर पूरे वृंदावन का नव निर्माण किया, तो वेरी प्रोमिनेंट। लेकिन वहां पर हर गोस्वामी अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अपने अनुशासन की सीमा को स्वीकार करते हुए संतुष्ट थे। जब कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने का क्रम आरंभ कर रहे थे, तब वो सभी गोस्वामियों के पास और सभी ब्रजवासियों के पास जा रहे थे और उनसे आज्ञा ले रहे थे। वैष्णवेर गुण ग्राही न देखाए दोष, कौय मने वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। तो हरिदास पंडित के पास भी गए जो कभी वैष्णवों का दोष नहीं देखते थे, और तब इन सभी वैष्णवों ने उनको महाप्रभु की शेष लीलाओं का वर्णन करने का आदेश किया, है कि नहीं? तो सभी वैष्णवों ने जब महाप्रभु की शेष लीलाओं का वर्णन करने को कहा, तब उस समय कविराज गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आए और कहा कि मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मैं तभी आशीर्वाद दूंगा एक शर्त पर कि आप मेरे विषय में एक शब्द नहीं लिखोगे। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी का कोई वर्णन नहीं। वैसे ही नरहरि सरकार के भक्ति रत्नाकर में भी कोई वर्णन नहीं, बहुत कम वर्णन है। तो अधिकांश जितने वैष्णव ग्रंथ हैं उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन, जितना उन्होंने कार्य किया उसके मापदंड में बहुत कम वर्णन है। कहा गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन रहे, कहीं कहते हैं अनंग मंजरी, और उसी श्लोक में गौड़ गणोदेश दीपक कहते हैं कि वो गुण मंजरी भी रहे। तो इसलिए जितने भी मंदिर हैं वृंदावन के, उन सप्त देवालयों में सबसे उत्कृष्ट जो अर्च विग्रह की आराधना सेवा पूजा वो राधारमण मंदिर में होती है। और उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी के जमाने में श्रीरंगम से वहां से अग्नि लेके आए थे और उस अग्नि से राधारमण मंदिर के डीटी किचन में अग्नि प्रज्वलित की गई। और पिछले 500 वर्षों से राधारमण मंदिर में डीटी किचन में वो अग्नि अभी भी प्रज्वलित है और उसी के ऊपर राधारमण के लिए भोग आज भी बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को आदेश किया कि इस्कॉन के डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए आप लोग राधारमण मंदिर का एक एग्जाम्पल स्वीकार करो। कृष्ण क्षेत्र महाराज अपना पीएचडी टॉपिक राधारमण मंदिर के डीटी वर्शिप और कैसे डीटी वर्शिप के जो अंग हैं वो अष्टांग योग के 8 अंग से समानता रखते हैं, इसके ऊपर उनका पीएचडी रहा। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरणों में नमन करते हैं और 1585 में 85 वर्ष की आयु में उनका तिरुभाव हुआ। तब फिर हम आते हैं मदन मोहन मंदिर, जो कि यहां हमारे पीछे मदन मोहन देव खड़े हैं। पालघर के गालतारे में कैसे पहुंच गए? मदन मोहन तो वृंदावन के हैं, वृंदावन से करौली तक गए, गालतारे में कौन लेके आ गया? राधानाथ स्वामी। तो राधानाथ स्वामी जब चीर घाट पर 1971 में जब रहते थे तो चीर घाट में सोते थे और प्रातःकालीन उठने के पश्चात जब यमुना स्नान करते तो स्नान करते करते सबसे पहले जब चीर घाट से देखते तो मदन मोहन का मंदिर उनको दिखता था। तो दिन का सर्वप्रथम दर्शन उनका मदन मोहन मंदिर का होता था और उसके पश्चात स्नान करके कपड़े बदल कर वो सारे मंदिरों की मंगलाओं में जाते थे और आरंभ करते थे मदन मोहन से, फिर जाते थे गोविंद देव, राधारमन और सारे मंदिरों की गोकुलानंद वगैरह मंगल आरती करते थे। वीजा के कारण उनको अमेरिका आना पड़ा, न्यूयॉर्क में थे। उस समय किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन बना रहे हैं। राधानाथ महाराज ने संकल्प लिया था कि मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब सुना कि न्यू वृंदावन बनेगा, अमेरिका में वृंदावन बनेगा, तो उन्होंने कहा अरे लगता है अमेरिका में रहकर भी मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, ये सोचकर वो न्यू वृंदावन पहुंच गए। 1972 में जब न्यू वृंदावन में आए तो 1972 में ही प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में पहुंचकर गोविंद देव मंदिर का शिलान्यास किया, पहला मंदिर, और कहा कि जल्दी से जल्दी राधा गोविंद मंदिर बनाओ और 7 मंदिर और बनाओ, 12 बनाओ। भक्तों ने प्रभुपाद को कहा कि हम लोग कभी भारत गए नहीं, हम लोग तो कभी वृंदावन देखे नहीं, वृंदावन का प्रतिमा प्रतिरूप कैसे बनाएंगे, ओरिजिनल ही हमने नहीं देखा। तो इस तरह जब प्रभुपाद जी को उन लोगों ने कहा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप मेरे लिए यहां रहने के लिए निवास बनाइए, मैं रहूंगा और आपको संकेत करूंगा कि वृंदावन कैसे बनाना है। तब प्रभुपाद वहां पर प्रभुपाद जी के लिए वो लोग घर बनाने लगे, लेकिन वो बहुत साल तक घर बनता रहा और जब वो घर बन के खुला तो 1979 हो गया, प्रभुपाद तब तक दिवंगत हो गए। तो 79 में जब खुला वो इतना सुंदर मंदिर बना, घर बना, उसका नाम हो गया प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आने लगे, लेकिन उसके उद्घाटन के पश्चात वहां के जो लीडर थे उनको लगा कि इतना ये सफल प्रक्रिया हमने सिद्ध किया है तो लगता है हमारा आइडिया प्रभुपाद के आइडिया से ज्यादा काम करेगा। तो कई लोग उनको बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने सात मंदिर की बात की, उसको बनाते हैं, नाम दे रखा है न्यू वृंदावन, नाम रख दिया न्यू वृंदावन, कम से कम वृंदावन तो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कुछ और बनाएंगे, और एक दूसरी दिशा में वो न्यू वृंदावन को लेके गए। खैर बहुत कुछ घटनाएं हुई, राधानाथ महाराज और कई उनके गुरु भाई धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे कब प्रभुपाद जी का वो स्वप्न पूरा होगा, ये सात मंदिर और 12 वन न्यू वृंदावन में बनेंगे, जिसके लिए वो वहां रुके थे। एकमात्र कारण था जिसके लिए वो न्यू वृंदावन में सेवा करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन कई वर्ष बीतकर 1993 में, फिर 1995 में राधानाथ महाराज को फिर जीबीसी बनाया गया 97 में। तब राधानाथ महाराज ने जीबीसी बनने के बाद सबसे पहला डिसीजन लिया कि न्यू वृंदावन में हम मदन मोहन मंदिर बनाएंगे, और तुरंत उन्होंने अपने शिष्य जयगोपाल प्रभु को भेजा और कहा कि वृंदावन के सप्त देवालय के ऊपर आप अपना मास्टर्स थीसिस करो। तो जयगोपाल दास पुणे यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन डाले, पुणे यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निवेदन किया कि आप परमिशन दो हमारे शिष्य को, हमारे छात्र को मेजरमेंट लेने के इन मंदिरों का, ये सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से इनका कोई मेजरमेंट नहीं ले सकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने देखा कि पुणे यूनिवर्सिटी निवेदन कर रही है तो आदेश कर दिया। उनके परमिशन से जयगोपाल दास ने मदन मोहन मंदिर का पूरा मेजरमेंट लिया 1997 में। इतिहास जब कब द्वार खोलता है तो फिर उसका अवसर, उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। दो कॉपी, एक अपने पास रखे, दूसरा दिया राधानाथ महाराज को। राधानाथ महाराज उस कॉपी को न्यू वृंदावन लेके आए और वहां लोगों को दिया और कहा कि ये डिजाइन है, आप लोग कंस्ट्रक्शन की तैयारी कीजिए, मैं कलेक्शन करूंगा। तो राधानाथ महाराज ने व्यक्तिगत रूप से अगले 3-4 वर्षों तक बहुत कलेक्शन किया, लेकिन कई कारणों से इतना धन एकत्रित होने पर भी वो मदन मोहन मंदिर वह नहीं बन पाया। एक बार फिर प्रयास किया 2002 में, फिर नहीं बन पाया। तो बार बार प्रयास किया, प्रयास विफल रहा। खैर आगे चलते हुए जब 2009-10 में हम लोग यहां गेस्ट हाउस वगैरह बनाना स्टार्ट किए, वृंदावन कॉटेज और सत्संग भवन और योगशाला वगैरह बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद 2012-13 में, 2013 जुलाई 21 तारीख को राधा गोपीनाथ का 25वां सालगिरह था और जुलाई 22 को हम लोग यहां पर थे, और सत्संग भवन का जो गिफ्ट शॉप है, सत्संग भवन के गिफ्ट शॉप में हम लोग बैठे हुए थे। उस समय वो ऑफिस टाइप का था और महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का, क्योंकि उस समय तक ये सारे गेस्ट हाउस बन गए थे, ये सब बन गया था, गौशाला भी बन गया था, और अभी हम लोग विचार कर रहे थे आगे क्या करना है। तो मैं कह रहा था कि महाराज कि अभी हम लोग को एक मंदिर बनाना है, क्योंकि नहीं तो ब्रह्मचारी सब चौपाटी चले जाएंगे। उनको बनाए रखने के लिए यहां पर, उनको सेवा के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए एक मंदिर चाहिए यहां पर। तो फिर ये वृंदावन बिहारी का मंदिर महाराज सभी भक्तों को लेके आए यहां पर, और फिर गौशाला में लाकर उन्होंने संकेत किया कि ये गौशाला यहां पर थी, जहां मंदिर है वहां गौशाला थी पहले, और बोले यहीं पर मंदिर बनेगा। तो वो निर्धारित हुआ उस दिन, और फिर दूसरा चीज निर्धारित हुआ, महाराज उसी वहां पर बैठकर न्यू वृंदावन के 5 बात बता रहे थे प्रभुपाद की इच्छा। पहला गौशाला, दूसरा कृषि, तीसरा शिक्षा, चौथा 12 वन और 7 मंदिर, और 5वां गेस्ट हाउस। तो प्रभु महाराज ने कहा कि गेस्ट हाउस हमारा बन गया है, गौशाला भी बन गया है, है कि नहीं, और कृषि तो हो ही रहा है, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग वृंदावन बनाएं। तो वृंदावन बनाने के लिए महाराज ने कहा कि तीन चीजें होनी चाहिए, सात मंदिर, यमुना और गोवर्धन, ये तीन हो तो वृंदावन साक्षात उपस्थित है। तो 22 जुलाई 2013 गुरु पूर्णिमा का दिन था, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, और उसी दिन हमारे बजरंगबली हनुमान जी का भी प्रतिष्ठा का दिन था, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी प्रतिष्ठा हुई, जो वहां पर सत्संग भवन में ना, वृंदावन कॉटेज के बगल में। तो चर्चा हो रही थी कि सात मंदिर बनाएंगे, तो फिर महाराज ने कहा कि बाकी मंदिर तो रेगुलर ब्रिक का बनाओ, लेकिन दो मंदिर गोविंद देव और मदन मोहन लाल पत्थर का होना चाहिए। तब महाराज ने कहा पूरा उसका मदन मोहन बड़ा होना चाहिए, बाकी फाइनेंस टीम सब बैठी थी, बोले बड़ा कितना बड़ा? तो महाराज ने कहा बड़ा, तो बोला अरे कितना बड़ा, इतने पैसे थोड़ी हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है आधा। तो महाराज की तो पहले से ही इच्छा थी बड़ा, लेकिन जब सबका रिएक्शन देखा तो महाराज ने चुपचाप उसको आधा कर दिया और फिर 30-35 फीट का वहां बना दिया। तो वहां पर बिल्कुल, तो फिर सब पूछने लगे कहां से आएगा, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो आनंद गोपाल प्रभु बैठे थे, आनंद गोपाल प्रभु तुरंत बोले महाराज मैं स्पॉन्सर करूंगा मदन मोहन मंदिर। तो महाराज ने तुरंत कहा कि सनातन गोस्वामी की कृपा आप पर बनी रहे। तो ऑन द स्पॉट वो मदन मोहन मंदिर वहां स्पॉन्सर हुआ, और फिर महाराज सभी भक्तों को लेके घूम रहे थे और कहां पर मदन मोहन बनेगा हमारा, तो फिर वहां पे सबसे पहले अभी जो ब्रह्मांड घाट है पहले वहां पर होने वाला था, ऑलमोस्ट तय हो गया था। महाराज सबको पूछते ना व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, सबने हाँ में हाँ हाँ हाँ। फिर महाराज ने बंकिम राय प्रभु को देखा और बोला आप क्या कहते हो? बंकिम राय प्रभु बोले नहीं बिल्कुल ये जगह ठीक नहीं। महाराज ने कहा तुमको कौन सा पसंद है? फिर उन्होंने वो टीला दिखाया जहां पर अभी मदन मोहन है और बोले वहां होना चाहिए। तो महाराज ने कहा बंकिम राय प्रभु हमेशा सबसे हटके सोचते, और फिर सबको लेके ऊपर वहां पर गए और वहां खड़े होके देखा और कहा कि हाँ ये वास्तव में सही है, कृष्णा है स्पोकन थ्रू बंकिम राय प्रभु, सो दिस इज द प्लेस। फिर वो मदन मोहन वहां पर स्थापित हुआ। अच्छा, वो स्थापित होने के पश्चात हम लोग सब प्रसन्न थे और सोचा कि वृंदावन पूरा हो गया। 2015 अक्टूबर में जीबीसी मीटिंग थी, सब जीबीसी आए, उनको लेके हमने एक वीडियो बनाया। 2015 के कार्तिक यात्रा में हमने उसको दिखाया भी प्रभुपाद तिरुभाव दिवस में, लेकिन किसी कारणवश महाराज उसको देख नहीं पाए। उसके बाद अगले वर्ष जब फरवरी के महीने में जब महाराज जीबीसी मीटिंग वगैरह करके अमेरिका जा रहे थे, लंदन के लिए उनका फ्लाइट था, उसके जस्ट पहले मैं उनके रूम में गया और कहा कि ये जीबीसी लोग बहुत पसंद किए वृंदावन फॉरेस्ट, बड़ा सुंदर उन्होंने अपना अपना उद्गार व्यक्त किए। तो महाराज ने कहा कहां पे ये? मैंने कहा वीडियो है, पूरे कांग्रेगेशन देख चुके, आपने देखे क्या? महाराज ने कहा तुम लोग मुझे कुछ दिखाते ही नहीं। मैंने कहा अरे पंडाल में इतना जोर से चल रहा था। तो महाराज ने कहा मैं तो उस समय गोवर्धन पैलेस में गया था प्रभुपाद फेस्टिवल मनाने, मैंने कहा देखा, तो लेके आओ। तो लैपटॉप में लाकर उनको दिखाया, लगभग 7 या 12 मिनट का वो वीडियो है वृंदावन फॉरेस्ट, उसमें सब लोग स्तुति कर रहे, भक्ति चारू महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, लोकनाथ महाराज है, अपने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, गोविंद महाराज, भक्ति चैतन्य महाराज, देवामृत महाराज, सब लोग, बद्रीनारायण महाराज, सब उसमें बोल रहे हैं। और महाराज को देखते देखते उनका, महाराज की मुस्कान बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और लास्ट में इतना जोर से मुस्कुराते हुए, फिर जैसे ही वो वीडियो समाप्त हुआ, महाराज मुझे देख के कहते हैं मेरे मन में एक आइडिया आया है। तो मैंने कहा मुझे बड़ा डर लग रहा है। महाराज ने कहा बताऊं क्या? मैंने कहा बता ही डालो। तो महाराज ने कहा अब हम एक मदन मोहन मंदिर बनाएंगे। मैंने कहा वो तो बन चुका। महाराज ने कहा नहीं, फुल साइज, क्या ख्याल है? तो मेरे मन में लगा कि बिल्कुल बेकार आइडिया है, लेकिन मैंने कह दिया हां बढ़िया आइडिया है। और फिर महाराज, मतलब मेरे तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जरूरत है, लेकिन अब हां बोलने की आदत लग गई थी, तो कहा चलो भाई इसको भी आजमा लेते। तो उसके बाद फिर वो जो ड्राइंग्स 1997 में निकाले गए, जिसके बेसिस पे वो वाला मंदिर बना, उसी के बेसिस पे फिर ये पूरा स्टार्ट हो गया। और लगभग फरवरी में महाराज ने ओके किया, और फिर महाराज ने किसी भक्त से बात की और उन्होंने, वो तैयार हो गए कुछ फंडिंग करने के लिए, और मार्च में तुरंत पत्थर कट के स्टार्ट हो गए। और ये इतने रफ्तार से चलने लगा, किसी को समझा भी नहीं हो क्या रहा है। फिर अचानक कुछ महीने के बाद फाइनेंस कमेटी जागी और बोली ये क्या चल रहा है, अरे बाकी कई जगह पर अपने को प्रॉब्लम है और इतना खर्चा इसमें करो, बंद करो। तो आधा जब पत्थर कुछ चल रहा था काम, वो बंद हो गया और काफी दिन तक स्थगित रहा जब तक क्लैरिटी नहीं आई। तो लगभग ये 2016, आपको याद होगा जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ हम लोगों का, तो यहां पंडाल लगा हुआ था और पंडाल के दोनों तरफ पत्थर गिरे हुए थे मदन मोहन के। तो लगभग अप्रैल 2016 से पत्थर आना स्टार्ट हो गया था यहां पर कट के, लेकिन वास्तव में जो फाउंडेशन का काम है वो 2017 अप्रैल में भूमि पूजन हमने किया, और भूमि पूजन के बाद फिर फाउंडेशन का काम अप्रैल में जून में ये यहां पर हुआ, और उसके पश्चात दिसंबर 7 तारीख 2017 को पहला बड़ा वाला पत्थर जो इस तरफ वाला है, बड़ा वाला पत्थर 7 दिसंबर को जो 6 टन वाला बड़ा पत्थर है, वो एक एक जो है 6-6 टन का है, वो बड़ा 6000 किलो का है एक एक। अभी तो शांति से बैठा है, गिरेगा तो नानी याद आ जाएगी। तो वो जो है दिसंबर 7 तारीख 2017 को रखा गया, और तब फिर प्रश्न उठा कि भाई सबको समझ गया कि अभी तो ये बनने ही वाला है, तो फिर अब क्या करें। तो फिर उस समय चर्चा हुई महाराज के साथ कि अभी क्या अंदर फोटो रखेंगे कि विग्रह रखेंगे। महाराज ने कहा विग्रह रखेंगे। कौन सी विग्रह रखेंगे? बोले वही ओरिजिनल मदन मोहन। ओरिजिनल मदन मोहन कैसे बनाए? तो फिर हमारे शिवानंद श्याम प्रभु को सेवा दी गई, ये और महाभागवत प्रभु और अनुपम गौरांग प्रभु तीनों ने अपनी लीला शुरू की। और तब जो है बड़े विस्मयजनक रूप से, क्योंकि बड़ा कठिन था, मेजरमेंट ले नहीं सकते, है कि नहीं, तो फिर वो गए और वहां पर करौली में जाकर जब खड़े थे तो वहां देखे कि मदन मोहन के ऊपर कौन सा गार्लैंड लगा हुआ है। मदन मोहन के ऊपर जो गार्लैंड देखा, फिर बाद में पुजारी ने उनको वो गार्लैंड महाप्रसाद के रूप में दे दिया, तो उससे उन्होंने अंदाज लगाया कि कितना हाइट होगा, क्योंकि वो गार्लैंड बिल्कुल चरणों तक था। उसके बाद मदन मोहन के सामने एक जाली है, वो जाली क्यों रखी है? क्योंकि लोग यहां से पैसा फेंकते हैं, तो मदन मोहन के ऊपर पैसा ना लगे इसलिए सामने एक जाली रखी है करौली में। तो ये लोग खड़े होकर, अब वो जाली के अंदर से मदन मोहन दिख रहे थे, तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि मदन मोहन कितने जाली के अंदर वो फिट हो रहे हैं, तो लेंथ और विड्थ में कितने टोटल मिला के कितने जाली के अंदर है, और जाली का अंदाज उन्होंने लगा दिया कि इतना भाई इतना जाली है। तो ये जाली और गार्लैंड को लेकर इन्होंने आरंभ किया और फिर पहुंचे दक्षिण भारत में महाबलीपुरम। सुना था वहां पर जो अपने मायापुर के जो नरसिंह देव हैं और हमारे हनुमान जी महाराज ने का ऐसे ही बनाना विग्रह, तो मायापुर के जो नरसिंह देव को कौन बनाया था वो मिल नहीं रहे थे। जो जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ, ऑर्डर दो, मैं करवाऊंगा। फिर पंकजांगरी प्रभु को पूछा तो पंकजांगरी प्रभु ने केवल एक नाम दिया, क्या नाम था, हाँ रत्नम, रत्नम करके नाम दिया, और फिर उनका कुछ जो है नंबर दिया। अब जो नंबर उन्होंने दिया, शिवानंद श्याम प्रभु ने वो नंबर ट्राई किया लेकिन वो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। तो इनको पता नहीं क्या प्रेरणा दी मदन मोहन ने, उसी नंबर को थोड़ा उन्होंने आगे पीछे कुछ चेंज कर दिया, अंधाधुन अंधाधुन कोई एक दूसरा नंबर लगाया, अपने आप को चेंज कर दिया। दो चार ट्राई के बाद वो नंबर लगा और सामने से फोन उठाया, रत्नम स्पीकिंग, उसी आदमी ने उठाया। ये टर्निंग पॉइंट था। अब वो मिल गया व्यक्ति, तब उसने कहा कि आजकल मैं ये काम नहीं करता हूं लेकिन मेरा भाई करता है। भाई का नाम क्या था, दत्तू रामन करके उसका भाई था, उसके पास भेज दिया। तो वहां पर जाकर उन लोगों ने जो अपना नक्शा अपने हिसाब से बनाया था वो प्रस्तुत किया। उसके पहले यहां पर तीन चार महीने उन लोगों ने एक जो नीचे बैकअप रूम है वहां पर मदन मोहन का एक नक्शा इन लोगों ने फाइबर में निकाला, जो करौली से वो लोग लेके आए थे अंदाज से, उसको दिखा के और बड़ा पेंटिंग अपना जो फोटो है हरिप्रिया माता जी ने लोकनाथ महाराज की बुक से जो एक निकाला वो पेंटिंग पूरा अपना पूरा फोटो, उसका पूरा लाइफ साइज उन्होंने लगा के दो कारीगर मिल के उसको बनाए। चार महीने में उन्होंने पूरा वो तैयार किया। उसका फाइबर को ये लोगों ने लेके ललिता विशाखा और मदन मोहन के फाइबर डीटीज को लेकर वो लोग एयरप्लेन में जाने के लिए तैयार हुए। इंडिगो वाले झटका खा गए, इंडिगो एयरलाइन वाले बोले ये क्या लेके चल रहे हो, बोले हम अपने भगवान को लेके जा रहे हैं। तो वहां पे झगड़ा हो गया। ललिता विशाखा को फिर भी जाने के लिए देने के लिए तैयार थे लेकिन इतना बड़ा लकड़े के बक्से के अंदर, फिर बोले ठीक है लकड़ा का बक्सा हटा देंगे और हटाकर उसके ऊपर टेप टेप बांध के अपना ही सब धोती वोती डालकर उसमें टेप लगाया और संघर्ष के साथ उसको अपने साथ हाथ में लेके गए और फिर वहां पर उनको दिया। तो बहुत कुछ हुआ उस, लेकिन जम नहीं पाया। और फिर वहां से उनको पता है कि कोयम्बतूर में भी होता है, कोयम्बतूर में गए तो मालूम पड़ा वहां पे जो पत्थर है वो मंदिर बनाने के लिए पत्थर प्रयोग होता है, विग्रह के लिए नहीं। फिर कुंभकोणम में गए, वहां ललिता और विशाखा को जो पंच तत्व बने ना मायापुर में वहीं पे बने थे, उन कारीगर के पास दे दिया। और फिर वापस आए, एक दो प्रयास के बाद जो इनका दत्तू रामन है उसने भी हाथ उठा दिया, बोला यार मेरे से नहीं होने वाला। फिर उसने कहा मेरा एक साला है, उसका नाम क्या, कुमार, कुमार स्थापति, वो वाला ये बनाएगा। तो फिर वो उनके पास गए और फिर उनके ऊपर आश्रित हो गए। और ये सब होते होते सितंबर 2018 हो चुका था और कुमार स्थापति ने इनको कहा कि देखो भैया आप लोग मेरे सर पे चढ़ के बैठे रहोगे तो मेरे से काम नहीं होगा, आप लोग थोड़ा घर घूम के आओ। तो ये लोग तीन दिन के लिए गए घर और लौट के आए, तो तीन दिन में उसने लगभग 15 दिन का काम कर दिया था और पूरे मदन मोहन देव को एक पूरा रूप दे दिया था। नहीं, नहीं, तीन दिन के अंतर्गत, अक्टूबर 1 से लेकर 3 तारीख के बीच में। तो अक्टूबर 1 तारीख, अक्टूबर 1, 2018 को मदन मोहन का फाइनल जो डीटी का बनना स्टार्ट हुआ। तब उसके पहले तीन पत्थर मदन मोहन के बन के रिजेक्ट हुए, तीन बार रिजेक्ट हुए, ये चौथी बार चौथा पत्थर अक्टूबर, और तब उसके बाद वो बनते बनते लगभग 22 अक्टूबर को समाप्त हुआ, 22 दिन में पूरा ये विग्रह बना है, और उसके बाद ट्रक में डालकर वो लोग उसको लेके आए, क्योंकि राधानाथ महाराज 24 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर को निकलने वाले थे, हम चाहते थे उनके जाने के पहले उनको दिखा सकें, 24 अक्टूबर को ये विग्रह यहां पर आए, और तत्पश्चात ललिता और विशाखा भी उनके साथ आए। ललिता विशाखा भी जो पहला बार बने थे वो रिजेक्ट हो गए थे, कुछ गलती हो गई थी, फिर उसको कास्ट किया। तो इस प्रकार ये तीनों विग्रह जब यहां पर आकर राधानाथ महाराज ने उनको देखा, तो महाराज ने देखकर उनको सर्टिफाई किया कि ये बिल्कुल ओरिजिनल मदन मोहन जैसे ही है। और फिर उनके जो पुजारी करौली से आए अनूप भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी देखकर कहा कि हमारे ठाकुर जी करौली में है, मंदिर वृंदावन में है, आपने करौली और वृंदावन दोनों का समागम यहां कर दिया। तो मदन मोहन देव जब यहां प्रकट हुए, तो महाराज ने उस रात्रि को हम सभी को कहा कि अब मदन मोहन देव यहां आ गए हैं, वृंदावन धाम पूरी तरह प्रकट हो गया, अब मदन मोहन हजारों की संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जनवरी 25 तारीख को हमने 2019 को प्रतिष्ठा किया, 25 जनवरी 2019 को हमने यहां पर जनानिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु भी थे, दोनों थे, दोनों की उपस्थिति में राधानाथ महाराज के नेतृत्व में इंद्रदुम्न महाराज भी यहां पर उपस्थित थे, राम कुमार जी भी उपस्थित थे, अनूप कुमार जी भी उपस्थित थे। इन सभी महात्माओं के आशीर्वाद और इन सभी के विशेष अनुग्रह से शिष्य राधा मदन मोहन देव यहां पर उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, अपने कृपा का प्रसारण हम सभी के बीच करने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये हजार वर्षों तक अपनी कृपा देते रहेंगे। जीवन कमल दल जल जीवन तलमल, जैसे जल के ऊपर कुछ फेन के बुदबुदें उठती हैं, वैसे हमारा जीवन कुछ सालों में समाप्त हो जाएगा, इतिहास में केवल नाम बच जाएंगे, लेकिन मदन मोहन देव यहां खड़े होकर करोड़ों करोड़ों लोगों को, करोड़ों करोड़ों बद्ध जीवों को भक्ति करने की प्रेरणा देते रहेंगे। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में मदन मोहन देव के इस प्रतिष्ठा के समारोह में उपस्थित हो सके और मदन मोहन देव की सेवा में सम्मिलित हो सके। ये भगवान की असीम अनुकंपा कृपा है कि वो बुद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने पांच रूपों में प्रकट होते हैं, नाम, भागवत, विग्रह, धाम और वैष्णव। तो इसलिए विग्रह के रूप में वो प्रकट हुए हैं, इनके प्रति हमें असीम कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और आविर्भाव महोत्सव के दिन ऐसी कृतज्ञता को व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज हम राधानाथ महाराज को भी याद करते हैं। अच्छा, अब 25 जनवरी को ये आविर्भाव इनका हुआ, 27 जनवरी को, 28 जनवरी को कोई प्रोग्राम में हम गए थे, उसके बाद महाराज मेरे साथ थे कार में, महाराज ने पूछा, अच्छा पता है क्या मैंने ये मदन मोहन प्रतिष्ठा करने के लिए तुमको क्यों कहा? मैंने कहा नहीं पता, प्रतिष्ठा के पहले बताते तो अच्छा हो जाता था। तो महाराज ने कहा जब मैं न्यू वृंदावन में गया तो वहां अधिकारियों ने मुझे कहा कि जीवन भर आपको यहां से निकलने नहीं देंगे, आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो उस आदेश को सुन के मैं घबरा गया कि जो वृंदावन के स्मृतियों को लेके मैं चल रहा हूं वो कहीं मेरे हृदय के पट से नष्ट न हो जाए, मन के पर्दे से ओझिल न हो जाए। तो इसलिए मैं प्रतिदिन भोजन से पूर्व आधा घंटा बैठकर आंखें बंद करके पूरे ब्रज की परिक्रमा करता था, मानसिक परिक्रमा 10 साल तक। और मानसिक परिक्रमा करते हुए सबसे पहले सर्वप्रथम मैं चीरघाट में स्नान करते हुए मदन मोहन मंदिर का दर्शन करता। तो इसलिए वृंदावन का यह प्रतीक है। सनातन गोस्वामी जो कि वृंदावन के सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, वृंदावन को प्रकट करने में जिनका सबसे बड़ा हस्ताक्षेप रहा, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने और एक आधुनिक तीर्थ क्षेत्र को स्थापित करने इस मंदिर को इस स्वरूप में मैंने प्रकट किया है। तो ये राधानाथ महाराज की दूरदर्शिता थी, ये उनके श्रेष्ठ अग्रिम भक्ति का प्रमाण है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से, वैराग्य भक्ति और ब्रज प्रेम की शक्ति से ब्रज के इस अप्रमेय विग्रह मदन मोहन देव को यहां प्रकट कर पाए। बिना मदन मोहन देव की कृपा के, अनुमति के, इस प्रकार का अद्भुत दर्शन संभव नहीं। इस्कॉन में तो मैं 1993 में ही ज्वाइन हो गया था फुल टाइम, लेकिन कभी विग्रहों को देखकर आंखों से आंसू नहीं आए। लेकिन जिस दिन प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा होने के बाद लगभग 3-4 बजे ही पहला दर्शन मैंने लिया, और जैसे ही दर्शन लिया, पहले ड्रेसिंग के बाद जो दर्शन था, अकस्मात आंखों से आंसू आ गए देखकर कि भगवान क्या स्वरूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हम लोग जाकर करौली में दर्शन किए थे और भगवान से अनुमति लिए थे कि आप यहां प्रकट हो जाइए। तो इसलिए ये विशेष सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा और अनुग्रह व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। और आज हम राधानाथ महाराज को यहां मिस कर रहे हैं, अन्यथा जनवरी के महीने हमेशा वो कई वर्षों तक रहे हैं। और मदन मोहन देव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत शीघ्र वो अपने प्रिय भक्त राधानाथ महाराज को यहां पर प्रकट करने के लिए व्यवस्था करें, सुरक्षित रूप से हर प्रकार की व्यवस्था हो, जिससे कि हम पुनः उनके संगलाप का आस्वादन कर सकें और वो भी अपने प्रिय आराध्य देव मदन मोहन के दर्शन कर सकें। इन प्रार्थनाओं के साथ आज के इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि प्रतिदिन अपने भक्ति भाव से, अपने भजन से, अपने साधना से, अपने प्रार्थनाओं से मदन मोहन देव को अपने हृदय के अंदर बांध के रखिए, उन्हें पूरी तरह हस्तगत करके रखिए और यही प्रार्थना कीजिए कि हमारा क्षण क्षण उनके स्मरण में, उनकी सेवा में निकलता चला जाए। और अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक कुरी जानी, और हमारा मन भी उस वृंदावन से अभिन्न बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी का पूरा कथा, मदन मोहन का आरंभ से पूरा कथा बताया। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी का आरती होगा, आप सब लोग आरती में भाग ले सकते हैं, उसके बाद सबको द्रोण में प्रसाद मिलेगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन मोहन देव ललिता देवी की, श्रीमती राधा रानी की, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, हरे कृष्णा।
यार रसिक गौर, अरे क्या ट्रेनिंग दिया है। I can't believe it. Hare Krishna. Jai Radha Madan Mohan Dada, Madan Mohan Dada. जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे शील सनातन प्राण धन हे शील सनातन प्राण धन हे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे संसार दावान ललिढ लोका त्राणाय कारुण्यं घनाघनत्वम् संसार दावान ललिढ लोका प्राणाय कारुण्यं घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुरुनानवस्य वन्दे गुरु श्री
चरणारविंदा। महाप्रभु चतम पां श्रुतरंग भजो वंदे गुरु श्री आराधन नित्य नाना भक्ताली वंदे गुरु श्री चरणारविंद
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद
स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संघम् त्वैव तृप्तेन् भवतु।